एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला साथी मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी साथी मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो सदियों से रहस्य, आकर्षण और हाँ, कभी कभी गलत फहमियों का केंद्र भी रहा है, कबाला।
हाँ बिल्कुल, और इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगी जोसेफ डैन की विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें। कबाला शब्द मतलब आजकल बहुत सुनने में आता है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, कभी हॉलीवुड सितारों से जुड़ा हुआ, कभी किसी आध्यात्मिक ट्रेंड के तौर पर।
वही, लेकिन सवाल ये है कि इस शब्द के पीछे का असली इतिहास और विचार क्या है। आज की ये जो गहरी पड़ताल है, ये इसी गुत्थी को सुलझाने की एक कोशिश है।
बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि कबाला की जो समृद्ध, जटिल और अक्सर, जैसा आपने कहा, गलत समझी जाने वाली ऐतिहासिक और बौद्धिक जड़ें हैं, उन्हें उजागर करें। जोसेफ डैन का काम हमें इसकी जो सतही समझ है ना, जो अक्सर पॉप कल्चर में दिखती है, उससे कहीं आगे ले जाता है।
ये बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि जानकारी के इस युग में गहरी और प्रामाणिक समझ खोजना ही मुश्किल हो गया है।
सही बात है, सतही जानकारी बहुत है।
तो चलिए सबसे पहले उस विद्वान के बारे में थोड़ा जानते हैं जिनके काम पर हमारी आज की चर्चा आधारित है, जोसेफ डैन। ये कौन थे और कबाला पर लिखने के लिए इनका दृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
देखिए, जोसेफ डैन यहूदी रहस्यवाद और मध्ययुगीन यहूदी विचार के क्षेत्र में आप कह सकती हैं दुनिया के अग्रणी विद्वानों में से एक थे।
अच्छा,
वो यरूशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय में गेर्शोम शोलिम प्रोफेसर के प्रतिष्ठित पद पर थे। और मजेदार बात यह है कि ये पद आधुनिक कबाला अध्ययन के संस्थापक गेर्शोम शोलिम के नाम पर ही है।
अरे वाह, तो ये अपने आप में डैन की अकादमिक कद को दिखाता है।
बिल्कुल, मतलब वो इस विषय के शीर्ष विशेषज्ञों में गिने जाते थे।
लेकिन उनकी खासियत क्या थी, मतलब क्यों हमें कबाला को उनके नजरिए से समझना चाहिए, बाकी लोगों से अलग क्या था?
डैन का दृष्टिकोण कई मायनों में यूनिक है। पहली बात तो उनका दशकों लंबा शोध, उन्होंने मूल हिब्रू और अरामी स्रोतों का बहुत गहरा अध्ययन किया। दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका कठोर ऐतिहासिक और आलोचनात्मक नजरिया। वो कबाला को किसी आध्यात्मिक गुरु या इसे बेचने वाले लोकप्रिय लेखक की तरह नहीं देखते।
अच्छा, तो फिर कैसे देखते हैं?
वो एक इतिहासकार की तरह, बिल्कुल एक इतिहासकार की तरह तथ्यों, ग्रंथों और उनके संदर्भों की पड़ताल करते हैं।
अच्छा, इसका मतलब है कि वो भावनाओं या दावों से परे जाकर सबूतों के आधार पर बात करते हैं।
बिल्कुल सही, उनकी जो विद्वत्तापूर्ण निष्पक्षता है ना, वो उन्हें कबाला की जटिलताओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने और समझाने में मदद करती है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कबाला क्या है, बल्कि इस पर ज्यादा जोर देते हैं कि ये क्यों और कैसे विकसित हुआ, किन ऐतिहासिक परिस्थितियों में इसके कौन से विचार उभरे।
ये नजरिया बहुत जरूरी है किसी भी चीज को उसके सही संदर्भ में रखने के लिए।
बिल्कुल,
तो डैन की किताबों का मुख्य संदेश क्या है, मतलब सार क्या है उनका, वे कबाला के बारे में क्या बताना चाहते हैं?
संक्षेप में कहें तो डैन की किताबें कबाला का एक बहुत व्यापक, मतलब हिस्टोरिकल और वैचारिक दोनों तरह का सर्वे प्रस्तुत करती हैं।
ठीक है।
उनका केंद्रीय तर्क ये है कि कबाला सिर्फ कुछ गूढ़ साधनाओं, गुप्त मंत्रों या प्राचीन रहस्यों का संग्रह भर नहीं है, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है।
हाँ, ये धारणा तो है,
है ना, बल्कि एक मौलिक और प्रभावशाली बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन है जिसने यहूदी विचार, संस्कृति और पहचान को सदियों तक, मतलब बहुत गहराई से आकार दिया है।
अच्छा, यानी ये सिर्फ व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का मामला नहीं, इसका एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी रहा है।
हाँ बिल्कुल, और डैन की दूसरी मुख्य दलील ये है कि कबाला को किसी एक स्थिर, मतलब एक जैसी अपरिवर्तनीय परंपरा के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये सोचना गलत होगा कि हजारों साल पहले जो कबाला था वही आज भी है। सच तो ये है कि ये विभिन्न रहस्यमय आंदोलनों, साहित्यिक परंपराओं और आध्यात्मिक प्रथाओं का एक जटिल और लगातार विकसित होता समूह है।
मतलब ये बदलता रहा है।
हाँ बिल्कुल, अलग अलग ऐतिहासिक संदर्भों से उभरा और बदला है। इसे एक नदी की तरह समझना चाहिए जिसमें कई धाराएं मिलती हैं और जो समय के साथ अपना रास्ता भी बदलती रहती है।
ये बात तो जो लोकप्रिय धारणाएं हैं उनको सीधी चुनौती देती है। आजकल तो कबाला को अक्सर किसी प्राचीन गुप्त ज्ञान या फिर किसी न्यू एज फैशन की तरह पेश किया जाता है।
बिल्कुल, और डैन इसी सतही समझ पर सवाल उठाते हैं। वो कबाला को एक परिष्कृत, एक गंभीर धार्मिक और दार्शनिक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसकी अपनी जटिल शब्दावली है, अपनी अवधारणाएं हैं, अपने तर्क हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को वो ऐतिहासिक और वैचारिक उपकरण देना है जिनसे वे खुद कबाला की वास्तविक जटिलता और यहूदी सभ्यता में इसके महत्व को समझ सकें।
खासकर आज के दौर में जब चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके पेश करने का चलन है।
सही कहा, डैन हमें गहराई में जाने के लिए प्रेरित करते हैं।
तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कबाला की इन गहराइयों में उतरने के लिए हमें कहाँ से शुरू करना होगा, इसकी जड़ें कहाँ हैं?
देखिए, कबाला एक संगठित आंदोलन के रूप में तो जैसा मैंने कहा मध्ययुगीन यूरोप में उभरा, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे।
अच्छा, कहाँ?
प्राचीन यहूदी रहस्यवाद में इसकी जड़ें खोजी जा सकती हैं। बाइबल में, तलमूद में और बाद के रब्बिनिक साहित्य में ऐसे विषय मिलते हैं जो बाद में कबाला के लिए महत्वपूर्ण बने।
जैसे कि?
जैसे मरकवाह रहस्यवाद। मरकवाह, इसका शाब्दिक अर्थ है दिव्य रथ। ये पहली सदियों के यहूदी रहस्यवादियों के उन अनुभवों से जुड़ा है जिसमें वो ध्यान और साधना के जरिए ईश्वर के सिंहासन और दिव्य लोकों की कल्पना या एक तरह की यात्रा करने का प्रयास करते थे।
दिलचस्प है, ये अनुभव पर आधारित था मतलब?
हाँ, ये काफी हद तक अनुभव पर आधारित था, सिद्धांतों पर काम।
क्या उस शुरुआती दौर का कोई खास ग्रंथ है जिसने बाद के कबाला की नींव रखी हो?
हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा रहस्यमय ग्रंथ है सेफर यत्सिरा। सेफर यत्सिरा यानी सृष्टि की पुस्तक।
सृष्टि की पुस्तक?
हाँ, बहुत छोटा सा ग्रंथ है, शायद तीसरी से छठी शताब्दी के बीच लिखा गया होगा। ये पहली बार हिब्रू भाषा के 22 अक्षरों और 10 मौलिक संख्याओं को सृष्टि के बुनियादी तत्वों के रूप में प्रस्तुत करता है।
अक्षर और संख्याएं सृष्टि के तत्व?
हाँ, और इन 10 संख्याओं को ये ग्रंथ सेफिरोट कहता है। ये शब्द बाद में कबाला का केंद्रीय तत्व बन गया।
सेफिरोट
से वो विचार शुरू हुआ कि ईश्वर ने भाषा और संख्या के माध्यम से सृष्टि की।
तो ये शुरुआती बीज थे। फिर कबाला एक स्पष्ट आंदोलन के रूप में कब और कहां सामने आया?
ये हुआ 12वीं और 13वीं सदी में। जगह थी दक्षिणी फ्रांस का प्रोवेंस इलाका और स्पेन।
अच्छा, यूरोप में?
हाँ, यहीं से हम जिसे क्लासिकल कबाला कहते हैं उसका दौर शुरू होता है। यहाँ कुछ शुरुआती कबालावादी समूह बने जिन्होंने नए विचारों और ग्रंथों को जन्म दिया।
इस दौर का कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ?
बिल्कुल, सेफर हा बाहीर। सेफर हा बाहीर यानी प्रकाश की पुस्तक।
प्रकाश की पुस्तक?
हाँ, ये 12वीं सदी के अंत में प्रोवेंस में सामने आया। इसे अक्सर पहला वास्तविक कबाला ग्रंथ माना जाता है। इसने सेफिरोट की अवधारणा को और विकसित किया।
कैसे? अब सेफिरोट का क्या मतलब था?
अब सेफिरोट सिर्फ संख्याएं नहीं रहीं, वो ईश्वर के 10 दिव्य उत्सर्जन या गुण बन गए जिनके माध्यम से अनंत अज्ञेय ईश्वर, जिसे कबाला में आइन सोफ जिसका कोई अंत नहीं।
हाँ, बिल्कुल,
जिसका कोई अंत नहीं। तो इस आइन सोफ से दुनिया संपर्क करती है और वो खुद को प्रकट करते हैं इन्हीं सेफिरोट के माध्यम से। ये ईश्वर की एक बहुत ही गतिशील, जटिल और थोड़ी पौराणिक छवि थी।
ये उस समय के मुख्यधारा के यहूदी दर्शन से कितना अलग था?
ओहो, बहुत अलग। उस समय के सबसे प्रभावशाली यहूदी दार्शनिक थे मैमोनिड्स। उन्होंने ईश्वर को एक शुद्ध, अमूर्त, एकदम तर्क संगत सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया था।
और कबाला?
जबकि बहेर और उसके बाद के कबाला ने ईश्वर के भीतर गतिशीलता, आंतरिक जीवन, यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष तत्वों की भी बात की। ये एक तरह से उस अत्यधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण के प्रति एक रहस्यमयी प्रतिक्रिया थी।
और फिर आता है कबाला का शायद सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली ग्रंथ जोहर। द जोहर। इसका क्या महत्व है?
जोहर,
हाँ,
जिसका अर्थ है प्रकाश, ये चमक, ये कबाला साहित्य का शिखर माना जाता है। पारंपरिक रूप से तो इसे दूसरी सदी के महान रब्बी शिमोन बार योहाई और उनके शिष्यों को श्रेय दिया जाता है। कहानी है कि वो रोमन उत्पीड़न से बचने के लिए एक गुफा में छिप गए थे।
लेकिन इसमें कुछ और है।
हाँ, लेकिन गेरशॉम शोलेम और जोसेफ डेन जैसे आधुनिक विद्वानों ने अकेडमिक शोध से ये स्थापित किया है कि इसे 13वीं सदी के अंत में स्पेनिश कबालावादी मोजिस डी लियोन ने लिखा था। या कम से कम संकलित जरूर किया था।
अच्छा, तो इसकी प्राचीनता का दावा बाद में किया गया, फिर ये इतना प्रभावशाली कैसे बना?
हाँ, प्राचीनता का दावा इसे वैधता दिलाने में सहायक रहा, ये तो है। लेकिन जैसा डैन कहते हैं, जोहर अपनी कथित प्राचीनता के कारण नहीं, बल्कि अपनी असाधारण साहित्यिक प्रतिभा, काव्यात्मक भाषा और गहन धार्मिक रचनात्मकता के कारण सफल हुआ।
साहित्यिकता के कारण?
बिल्कुल। ये हिब्रू बाइबल यानी तोरा पर एक विशाल, प्रतीकात्मक और बहुत गहरा रहस्यमय भाष्य है। ये तोरा के नियमों और कहानियों की सीधी साधी व्याख्या नहीं करता, बल्कि उन्हें गहरे छिपे हुए अर्थों के स्तर पर खोलता है।
ये कैसे करता है, मतलब इसका तरीका क्या है?
जोहर बाइबल की हर कहानी, हर आज्ञा को दिव्य दुनिया के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं के रूपक या प्रतीक के रूप में देखता है।
उदाहरण के लिए,
जैसे इब्राहिम की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि वो ईश्वर के एक गुण, एक सेफिरा का दूसरे से संबंध दर्शाती है। इसमें कबाला की कई केंद्रीय अवधारणाओं को विस्तार से समझाया गया है।
कौन कौन सी?
जैसे आइन सोफ, असीम, छुपा हुआ ईश्वर, 10 सेफिरोट, जो मिलकर ईश्वर की आंतरिक संरचना या देवत्व का नक्शा बनाते हैं, जैसे दया, न्याय, ज्ञान वगैरह वगैरह। शेखना, ईश्वर का स्त्री पहलू, उनकी उपस्थिति, जिसे अक्सर दुनिया में निर्वासित या बिखरा हुआ माना जाता है, और सित्रा अचरा, दूसरी तरफ या बुराई का क्षेत्र।
बुराई का क्षेत्र, सित्रा अचरा, और इसका मानव जीवन से क्या संबंध है?
यही जोहर का सबसे क्रांतिकारी विचार आता है। जोहर और उसके बाद के कबाला ने इस विचार को स्थापित किया कि मनुष्य के कार्य, खास तौर पर यहूदी धार्मिक आज्ञाओं का पालन, जिन्हें मित्सवोट कहते हैं, तो इन आज्ञाओं का पालन सीधे तौर पर ऊपर की दिव्य दुनिया को प्रभावित करता है।
हमारे कर्म ईश्वर को प्रभावित करते हैं।
हाँ, हमारे अच्छे कर्म, सही इरादे से की गई प्रार्थना, ये सब न केवल हमारी आत्मा को उन्नत करते हैं, बल्कि ईश्वर के भीतर संतुलन और सद्भाव को बहाल करने में और बिखरी हुई शेकीना को वापस लाने में मदद करते हैं। इसे थियर्जी कहते हैं।
थियर्जी मतलब मानव क्रियाओं से ईश्वर और ब्रह्मांड को प्रभावित करने की क्षमता।
बिल्कुल, ये इंसान को ब्रह्मांडीय नाटक में एक सक्रिय भागीदार बना देता है।
ये तो वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। क्या कबाला का विकास जोहर पर आकर रुक गया?
बिल्कुल नहीं। कबाला की कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब 1492 में स्पेन से यहूदियों को निष्कासित कर दिया गया।
हाँ, ये तो इतिहास की एक बड़ी घटना है।
बहुत बड़ी त्रासदी थी। कई निष्कासित यहूदी, जिनमें कई कबालावादी भी थे, वो ऑटोमन साम्राज्य के तहत आने वाले फिलिस्तीन के सफेद शहर में आकर बस गए।
सफेद,
आज के इजराइल में।
हाँ,
हाँ। 16वीं सदी में सफेद काबाला का एक धधकता हुआ केंद्र बन गया, और यहीं पर एक असाधारण व्यक्तित्व उभरा, रब्बी आइजक लूरिया।
आइजक लूरिया, इन्हें अरी भी कहते हैं ना?
हाँ, सम्मान से अरी यानी पवित्र सिंह।
तो अरी ने कबाला में क्या नया जोड़ा?
लूरिया ने कबाला को एक तरह से फिर से परिभाषित कर दिया। उनके विचारों को लूरिया ने कबाला कहा जाता है, और इसने आने वाली सदियों के यहूदी रहस्यवाद और यहाँ तक कि सामान्य यहूदी सोच को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया।
अच्छा,
क्या था उनका मुख्य विचार? लूरिया ने सृष्टि, निर्वासन, बुराई और मुक्ति की एक नई, नाटकीय और बहुत जटिल कहानी पेश की। इसके 3 मुख्य चरण हैं, जो एक ब्रह्मांडीय नाटक की तरह हैं।
3 चरण, पहला क्या है?
पहला है पिनजूम, यानी संकुचन या सिकोड़ना।
संकुचन
किसका?
ईश्वर का।
लूरिया ने पूछा कि अगर अनंत ईश्वर, इन सोफ, हर जगह मौजूद है, तो फिर सृष्टि के लिए जगह कहाँ से आई? उनका जवाब था कि सृष्टि करने से पहले ईश्वर को स्वयं को अपने आप में सिकोड़ना पड़ा, अपने भीतर एक खाली स्थान बनाना पड़ा, ताकि दुनिया अस्तित्व में आ सके।
ये तो बहुत ही साहसिक विचार है।
हाँ, ईश्वर को पीछे हटना पड़ा।
हाँ, एक तरह से
ये सृष्टि के लिए जगह बनाने का एक दिव्य कार्य था।
बहुत दिलचस्प। और दूसरा चरण?
दूसरा चरण है शेविरात हाकेलीम, यानी पात्रों का टूटना।
पात्रों का टूटना मतलब?
उस खाली स्थान में ईश्वर ने अपनी दिव्य रोशनी डाली, जिसे 10 पात्रों या केलिम में समाहित होना था। ये केलिम सेफिरोट के प्रतीक थे, लेकिन शुरुआती पात्र इस रोशनी की प्रचंडता को सहन नहीं कर सके और टूट गए।
ओहो, एक तरह की ब्रह्मांडीय दुर्घटना।
हाँ बिल्कुल, एक ब्रह्मांडीय आपदा। इस टूटन के कारण दिव्य रोशनी की पवित्र चिंगारियां, जिन्हें नित्सोत्सोत कहते हैं, वो नीचे भौतिक दुनिया में गिर गईं और अशुद्धता के खोलों या क्लिपॉट में कैद हो गईं।
क्लिपॉट?
हाँ, लूरिया के अनुसार यही बुराई की उत्पत्ति का रहस्य है और यही कारण है कि दुनिया टूटी हुई, अधूरी और अस्त व्यस्त लगती है।
और तीसरा चरण, क्या इस टूटन को ठीक किया जा सकता है?
हाँ, यही तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, टिकुन, यानी बहाली, सुधार या मरम्मत।
टिकुन?
हाँ, अब मानवता का, विशेष रूप से यहूदी लोगों का, ये ब्रह्मांडीय मिशन है कि वे अपने कर्मों, प्रार्थनाओं और धार्मिक आज्ञाओं के पालन द्वारा, सही इरादे कवाना के साथ, इन गिरी हुई पवित्र चिंगारियों को उनके क्लिपोर्ट से मुक्त करें और उन्हें वापस उनके दिव्य स्रोत तक पहुंचाएं।
यानी दुनिया की मरम्मत करना।
बिल्कुल, इस तरह धीरे धीरे दुनिया को उसकी मूल, पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्थिति में बहाल किया जा सकता है। इसे टिकून ओलेम, दुनिया की मरम्मत, कहा जाता है।
इसने तो निर्वासन और पीड़ा को एक बिल्कुल नया अर्थ दे दिया होगा, मतलब जो स्पेन से निष्कासन होगा।
बिल्कुल, लुरियाने कबाला ने स्पेन से निष्कासन जैसी त्रासदियों और यहूदी इतिहास की पीड़ाओं को सिर्फ ईश्वर की सजा के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें इस टिकून के ब्रह्मांडीय मिशन का हिस्सा बना दिया।
तो दुख एक मिशन बन गया।
हाँ, दुख और निर्वासन अब दुनिया को ठीक करने के पवित्र कार्य में भागीदार बनने का अवसर बन गए। इसने लोगों को अपार दुख सहने की शक्ति और एक गहरा उद्देश्य दिया।
कमाल है, लुरियानिक के बाद कबाला का विकास कैसे हुआ?
लुरियानिक कबाला बहुत प्रभावशाली साबित हुआ, लेकिन ये काफी जटिल और आप कह सकते हैं थोड़ा अभिजाते भी था, मतलब आम लोगों के लिए समझना मुश्किल। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 18वीं सदी में पूर्वी यूरोप में आया, जहां हसिदिज्म नामक एक लोकप्रिय रहस्यवादी आंदोलन का उदय हुआ।
हसिदिज्म, इसके बारे में सुना है?
हाँ, इसके संस्थापक थे इज़राइल बेन एलियजर, जिन्हें बाल शेम तोफ यानी अच्छे नाम का स्वामी के नाम से जाना जाता है।
तो हसिदिज्म ने कबाला को कैसे बदला?
हसिदिज्म ने कबाला के गूढ़ और जटिल विचारों को लिया और उन्हें आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। इसने ब्रह्मांडीय नाटक जैसे टिकुन वगैरह पर जोर देने के बजाय व्यक्तिगत, भावनात्मक और आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया।
मतलब अनुभव ज्यादा जरूरी हो गया।
हाँ, हसिदिज्म का मुख्य लक्ष्य बन गया डिवेकुट, यानी हर पल ईश्वर से गहरा, प्रत्यक्ष और आनंदपूर्ण जुड़ाव महसूस करना, उनसे बिल्कुल चिपक जाना।
तो इसमें तपस्या और पांडित्य का महत्व कम हो गया?
हाँ, कुछ हद तक। पारंपरिक यहूदी धर्म में तपस्या और गहन शास्त्रीय अध्ययन पर बहुत जोर था। बाल शेम तोव ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए अत्यधिक तपस्या या महान विद्वता ही जरूरी नहीं है।
तो फिर क्या जरूरी है?
सच्ची खुशी, उत्साहपूर्ण प्रार्थना, ईश्वर में सरल विश्वास, और यहाँ तक कि रोजमर्रा के कामों को भी पवित्र इरादे से करना ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है, जैसे खाना, पीना, काम करना। उनका मानना था कि हर चीज में, हर व्यक्ति में दिव्य चिंगारी मौजूद है।
और इसमें आध्यात्मिक गुरु की क्या भूमिका थी?
हसिदिज्म में जादिक यानी धार्मिक व्यक्ति या रेब्बे की भूमिका बहुत केंद्रीय हो गई।
जादिक?
हाँ, जादिक को एक ऐसा आध्यात्मिक नेता माना जाता था जो ईश्वर से असाधारण रूप से जुड़ा होता था, और वो अपने अनुयायियों यानी हसीदों की प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने और उन्हें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने में मदद कर सकता है। जादिक समुदाय का केंद्र बन गया।
तो हसिदिज्म ने कबाला को एक जीवित सामुदायिक आंदोलन बना दिया।
बिल्कुल, एक स्पंदित सामुदायिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध आंदोलन जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद है।
तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को देखते हुए, प्राचीन जड़ों से लेकर हसिदिज्म तक, जोसेफ डैन के काम से कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या उभरते हैं, क्या खास बातें हैं?
कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, जैसा कि डैन बार बार जोर देते हैं, कबाला कोई एक चीज नहीं है, ये मोनोलिथिक नहीं है।
हाँ, ये तो हमने देखा।
ये ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है और इसके कई रूप और धाराएं हैं। इसे किसी एक परिभाषा या बॉक्स में फिट करना असंभव है। इसे समझने के लिए इसके विकास और विविधता को स्वीकार करना जरूरी है।
दूसरी बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो है रहस्यवाद और पारंपरिक यहूदी कानून यानी हलाखा का गहरा संबंध। अक्सर हम सोचते हैं कि रहस्यवादी लोग नियमों को नहीं मानते होंगे।
हाँ, ये आम धारणा है।
पर कबालावादी खासकर जुहर और लूडिया के अनुयायी कानून तोड़ने वाले नहीं थे। वे तो हलाखा को और भी ज्यादा गंभीरता से लेते थे, है ना?
बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए हर धार्मिक क्रिया का एक गहरा, रहस्यमय और ब्रह्मांडीय महत्व था। वो टिकून का एक जरिया था।
तीसरा,
ज्ञान के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। कबाला के ये जटिल विचार सिर्फ कुछ विद्वानों के दिमाग की उपज नहीं रहे, इन्होंने समुदायों को आकार दिया, खासकर मुश्किल समय में।
जैसे
लूरिया ने कबाला ने निर्वासन के दुख को अर्थ दिया।
हाँ बिल्कुल, उसने एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान किया, और हसीदिज्म ने पूर्वी यूरोप के आम यहूदियों को आध्यात्मिक खुशी और समुदाय की भावना दी। यानी ये विचार लोगों के जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालते थे।
चौथा मुद्दा प्रामाणिकता का सवाल है, जो आज के संदर्भ में बहुत मायने रखता है। डैन इस बात पर जोर देते हैं कि ऐतिहासिक शास्त्रीय कबाला और आज के दौर में बिकने वाले लोकप्रिय अक्सर व्यावसायिक संस्करणों के बीच एक बड़ी खाई है।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। आजकल कई लोग या समूह कबाला के नाम पर कुछ चीजें सिखाते हैं जो शायद मूल परंपरा से बहुत दूर हों,
जिनमें ना तो ऐतिहासिक संदर्भ होता है, न वैचारिक गहराई, और न ही यहूदी जीवन और पाठ से उसका वो अनिवार्य जुड़ाव।
हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसा हम कभी कभी भारत में योग या ध्यान के साथ होते देखते हैं।
बिल्कुल, जहाँ आसन और सांस लेने की तकनीक तो सिखाई जाती है, पर उसके पीछे का गहरा दर्शन या आध्यात्मिक संदर्भ गायब हो जाता है।
डैन हमें स्रोतों की ओर लौटने और प्रामाणिकता की तलाश करने की चुनौती देते हैं।
और पांचवा महत्वपूर्ण संदेश, जो मुझे लगता है आज भी बहुत प्रासंगिक है, वो है टिकुन ओलम, दुनिया की मरम्मत की शक्तिशाली अवधारणा।
हाँ, ये विचार कि दुनिया टूटी हुई है, बिखरी हुई है, और इसे ठीक करना, इसकी मरम्मत करना हम इंसानों का काम है, ये लूरिया ने कबाला की एक अद्भुत देन है।
ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं लगता, नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक नैतिक आवाहन भी है। ये कहता है कि हमारे हर छोटे बड़े कार्य, हमारे चुनाव मायने रखते हैं। वे या तो दुनिया की टूट फूट को बढ़ाते हैं या फिर उसकी मरम्मत में योगदान करते हैं। ये हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
डैन की किताबों से कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो खास तौर पर ध्यान खींचती हैं, जो इन सब बातों का सार हों।
हाँ, कई हैं, जैसे उनका ये कहना कि कबाला कोई एक सिद्धांत नहीं बल्कि विविध आंदोलनों और परंपराओं का एक जटिल संग्रह है। ये हमें सरलीकरण से बचने और जटिलता का सम्मान करने की याद दिलाता है।
और ये भी कि कबालावादी यहूदी कानून को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसे रहस्यमयी चेतना से भीतर से बदलना और गहरा करना चाहते थे।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे परंपरा के भीतर ही नवीनता और गहराई खोजी जा सकती है।
जोहर के बारे में उनकी टिप्पणी भी सोचने लायक है। जोहर अपनी कथित प्राचीनता के कारण इतना सफल नहीं हुआ जितना अपनी असाधारण साहित्यिक प्रतिभा और गहन धार्मिक रचनात्मकता के कारण।
सही बात है, यह हमें सिखाता है कि किसी विचार का असली अधिकार उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और प्रभाव से आता है।
और आज के संदर्भ में चेतावनी महत्वपूर्ण है। कबाला के आधुनिक लोकप्रियकरण अक्सर शब्दावली तो अपना लेते हैं, पर उस समृद्ध और जटिल रहस्यमय परंपरा की मूल सामग्री और संदर्भ खो देते हैं।
बिल्कुल, ये हमें किसी भी चीज की सतह पर रुकने के बजाय उसकी गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है।
तो इन सब ऐतिहासिक और दार्शनिक विचारों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम इनसे अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं?
पहली सीख तो यही है कि हमें धार्मिक और वैचारिक विविधता और विकास को समझने और उसका सम्मान करने में मदद मिलती है। कोई भी परंपरा, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों न हो, पत्थर की लकीर नहीं होती।
हाँ, वो बदलती है।
वो समय, स्थान और इंसानी अनुभवों के साथ बदलती है, विकसित होती है। कबाला का इतिहास इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने में हमारी मदद करता है, खासकर जब हम किसी नए आध्यात्मिक दावे, गुरु या आंदोलन का सामना करते हैं।
बिल्कुल, डैन का तरीका हमें सिखाता है कि सवाल पूछें, इसका स्रोत क्या है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, क्या ये प्रामाणिक है या सिर्फ आकर्षक पैकेजिंग, क्या दावे सबूतों पर आधारित हैं?
तीसरा, ये हमें आध्यात्मिकता और बौद्धिकता या तर्क के बीच संतुलन साधने की प्रेरणा दे सकता है।
हाँ, ये जरूरी है। कबाला का इतिहास दिखाता है कि गहन रहस्यमय अनुभव और कठोर बौद्धिक विश्लेषण साथ साथ चल सकते हैं। डैन जैसे विद्वान खुद इसका प्रमाण है। रहस्यवाद का मतलब आंख बंद करके विश्वास करना या तर्क को ताक पर रख देना नहीं है।
और चौथा, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली लगता है, वो है कठिनाई और दुख में भी अर्थ ढूंढने की क्षमता।
हाँ, तिकुंड विचार कि दुनिया की यही टूटन हमें उसे सुधारने का अवसर और जिम्मेदारी देती है। ये हमें व्यक्तिगत और सामूहिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण दे सकता है।
ये निराशावाद के बजाय आशा और कर्म को प्रेरित करता है ना?
बिल्कुल, ये कहता है कि हाँ, दुनिया में समस्याएं हैं, अंधेरा है, लेकिन इसीलिए हमारी छोटी सी रोशनी भी मायने रखती है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे अहम सीख ये रही कि कबाला कितना जीवंत, कितना गतिशील और अनुकूलनीय रहा है। ये कोई म्यूजियम में रखी पुरानी चीज नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है।
हाँ।
जिसने अलग अलग मोड़ों पर यहूदी जीवन और विचार को सींचा है और उसे अर्थ दिया है। डैन हमें उसकी जटिलता की सराहना करना सिखाते हैं।
और मेरे लिए सबसे गहरा विचार वही टिकून का है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों का भी एक ब्रह्मांडीय महत्व हो सकता है। ये हमें अपने जीवन, अपने चुनावों और दुनिया पर हमारे प्रभाव के प्रति ज्यादा सचेत और जिम्मेदार बनाता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति या शांति की बात नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की भलाई में हमारी भूमिका की याद दिलाता है।
बिल्कुल।
जोसेफ डैन का विद्वतापूर्ण कार्य हमें कबाला के सतही आकर्षणों और गलतफहमियों से परे ले जाकर उसकी वास्तविक बौद्धिक गहराई, ऐतिहासिक यात्रा और स्थायी प्रासंगिकता को समझने में मदद करता है।
तो सोचने वाली बात यह है कि क्या टिकुन ओलेम यानी दुनिया की मरम्मत का ये सदियों पुराना विचार आज के हमारे बिखरे हुए समय में हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी सामाजिक, पर्यावरणीय और शायद राजनीतिक स्तर पर भी बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।